غیر قانونی تارکین وطن کا مسئلہ آسٹریلیا میں سیاسی بحث کا بڑا موضوع رہتا ہے۔ ایبٹ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد سے غیر قانونی تارکین وطن کی نیرو منتقلی بھی اسی سیاسی محض آرائی کا حصہ ہے، جس میں پناہ گزینوں کو سیاسی فٹ بال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر یہ غیر قانونی تارکین وطن نارو میں کن حالات سے دوچار ہیں؟ ان کے مسائل اور حالات کیا اتنے خراب ہیں کہ وہ خودکشیاں کرنے اور خود کو اذیتیں دینے پر مجبور ہیں؟ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پناہ گزین سے یا ریفیوجی سے کروا رہے ہیں جو پاکستان کے شمالی علاقے پارا چنار سے جان بچا کر مصیبتیں جھیلتے ہوئے کشتی کے ذریعے کرسمس آئی لینڈ پہنچے، مگر وہاں سے انہیں نارو منتقل کر دیا گیا۔ وہاں کے غیر قانونی تارکین وطن پر کیا گزر رہی ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو نارو لیے چلتے ہیں، جہاں پارا چنار سے تعلق رکھنے والے سید جاوید ہمیں اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ ایس بی ایس ریڈیو کی پروگرام کی تاریخ میں پہلی بار ہمیں نارو میں کسی پاکستانی پناہ گزین تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ سید جاوید، اب نارو منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں آپ کو مہاجر کی حیثیت آپ کی تسلیم کی گئی ہے، کس طرح کے حالات ہیں خاص طور پر ملازمتوں کے حوالے سے، اور وہاں کے مقامی لوگوں اور پناہ گزینوں کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہیں؟
مجبوراً لوگوں نے نکل کے جاب شروع کیا، نہ کوئی جاب اپرچونیٹیز ہے، اور اگر کوئی جاب کر بھی رہے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ وہ اگر میں کوئی جاب کر رہا ہوں یا میرے سپرویژن میں کوئی بندہ ہے تو وہ میرے ڈائریکٹیوز نہیں مانتے، وہ کہہ رہے کہ کس طرح ریفیوجیز یہ کتے اور یہ کس طرح ہمارے اوپر آ کے ہم پہ ڈائریکٹرز یا ہم پہ آرڈر کر رہے ہیں، تو اس طرح کے ماحول میں کون جاب کرے گا اور کون ذلیل ہوگا۔ میں خود کل ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلا ہوں لوکل شاپ پہ یہاں پہ نارو میں، تو ہوا یوں ہے سر کہ رستے میں پہلے مجھے گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے این آر سی کی، نارو ریہیبلیٹیشن سینٹر، تو ایک گاڑی آگے جا رہی تھی جس نے ہمیں اشارہ کیا کہ تم لوگ جاؤ نکلو اوورٹیک کر لو۔ جب ہم اوورٹیک کرنے لگے موٹر بائک پہ تو انہوں نے گاڑی اتنی قریب کر لی ہے کہ ہمیں ٹکر مار رہی تھی وہ گاڑی سے موٹر بائک کو، اور پھر ہم لکیلی بچ گئے ہیں، اور پھر ہم آگے رک گئے ہیں، انہوں نے گاڑی روکی ہے، اور پھر ایک دوسری گاڑی نے آ کے اس نے پوچھا ہے، تو میں نے کہا یہ ہمیں چیز کر رہے ہیں کافی دیر سے اور ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس نے بات کی ہے اور وہ گاڑی والا جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ پھر جب میں کمیونٹی میں چلا گیا ہوں دوست کے ساتھ، میں نے اپنا شیمپو لینا تھا اور میرا دوست میرا ویٹ کر رہا ہے، تو ایک بندے نے آ کے میرے دوست کو اسالٹ کی ہے۔ جب میرا دوست اندر آ گیا ہے وہ شاپ میں اور بہت غصہ تھا، کہتا ہے وہ اس طرح مسئلہ ہوا ہے، تو میں نے باہر آ کے جب پوچھا ہے تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ بندہ لوکل جو بندہ تھا وہ پولیس میں کام کرتا ہے اور اس کا نام ماروین ہے۔ پھر ہم پولیس اسٹیشن چلے گئے، پولیس اسٹیشن میں جب میں رپورٹ کرا تو پولیس اسٹیشن والے نے بولا کہ لوکل بہت غصہ ہے اور کیونکہ تم لوگ پروٹیسٹ کرے ہو تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تو مطلب آپ پولیس والے بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ سر اسائلم سیکر سے اگر میں بتاؤں تو وہ اب بہت برے حالات ہوتے ہیں، تو زندگی جو ہے ایک جیسے میں نے ایک سال دو مہینے پنجروں کے اندر فینسز کے اندر گزارے ہیں، بہت ٹف سچویشن میں رہے، وہ ٹف اور انفیوریبل سچویشن تھی۔ دو دو منٹ کا شاور ہوتا تھا، دو منٹ میں شاور لے لو، اور ایک ایک گھنٹہ اس شدید بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ادھر سر جی، اور سن ریز اتنے خطرناک سن ریز ہے ادھر کی کہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہو تو سن برن نکل آ جاتے ہیں، وہ چھالے نکل آتے ہیں گردن پہ اور ہاتھوں پہ۔ تو اس گرمی میں ہم جو ہے ایک ایک گھنٹہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے اپنے لنچ کے لیے، اپنے ڈنر کے لیے۔ سر جی اسائلم سیکر جو ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ اس کو کیمپ میں رکھا جاتا ہے جہاں سے وہ پروسیس نہیں ہوئے ہوتے اور وہ اپنے پروسیس کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سال دو سال ڈیڑھ سال دو سال لگتے ہیں، تین انٹرویوز ہوتے ہیں جو کہ تمہیں ڈیٹرمائن کر، تمہارا اسٹیٹس ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ اف یو آر ریفیوجی اور ناٹ، مینس تمہیں کس بات کا ڈر تھا جو اپنے ملک سے باہر آئے ہو، ملک سے وہ بھاگ کے آئے ہو، اور اگر وہ ڈر ٹھیک تھا جو اپنے ملک سے کسی خوف کی وجہ سے تم بھاگ کے آئے ہو، تو پھر وہ تمہیں اسٹیٹس دیتے ہیں اور اس اسٹیٹس کے بعد تم ریفیوجی بن جاتے ہو اسائلم سیکر سے۔ اور جس دن مجھے آ رہی تھی نا تو مجھے کہا گیا کہ کنگریچولیشن یو گاٹ یور نیم اگین، मीन तुमने अपना नाम दोबारा पा लिया। मैं हम बहुत खुश थे, लेकिन जब बाहर आए सर जी तो उधर बोट नेम था और कम्युनिटी में अब रेफ्यूजी के नाम से पहचाने जाते हैं, बोट आईडी से पहचाना जाता है कैंप में जब तक वो असालम सीकर है।
और एक कैंप में तकरीबन कितने लोग थे जब आप आए थे?
नारों में दो कैंप है, एक को कहते हैं RPC 2 जिसमें सिंगल्स रहते हैं, और एक को बोलते हैं RPC 3 जिसमें फैमिली होती है। फैमिली का मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन RPC 2 में जब तक मैं था तो ऑलमोस्ट 600 पीपल थे उधर।
और ज्यादातर किस जगह से आए हुए लोग हैं वहाँ पे?
ज्यादातर लोग जो थे ईरानियन थे।
अच्छा, और आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से? पाकिस्तान
सर जी, मैं पाकिस्तान के पारा चिनार से हूँ।
कितने साल पहले आप पारा चिनार से निकले थे?
सर जी, मैं जुलाई 2013 को पाकिस्तान से निकला हूँ। पाकिस्तान से मैं आया हूँ थाईलैंड से फिर मलेशिया से इंडोनेशिया, और उधर से बोट लिया है। 3 अगस्त को मैं पहुंचा हूँ क्रिसमस आइलैंड। सर मैं सैयद बंदश हूँ। बिल्कुल, जब हालात बहुत ज्यादा खराब थे उन्होंने रस्ते ब्लॉक की हुई थी, तो हम अफगानिस्तान की रस्ते से आते थे। तो अच्छा। अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा था तो मैं अफगानिस्तान की रस्ते से नहीं आया, मैं अपने रस्ते से आया हूँ। अपना जो अपना रोड था वो खुल गया था क्योंकि आर्मी ने और पाकिस्तान आर्मी ने रोड पे कब्जा किया था और अपनी चौकियां बनाई थी अपने।
अच्छा, अभी आपकी अम्मी का वहाँ पे क्या हाल है? आपकी बात होती है? आपके दो भाई हैं आप बता रहे हैं वहाँ पे?
हाँ जी सर, दो भाई हैं मेरे, दोनों बड़े हैं और फैमिली है, उनमें शादी शुदा है। अम्मी से जी बहुत अच्छा हुआ है बात मेरी, बहुत अच्छा हुआ है।
क्यों बात नहीं होती?
अगर सच बताऊँ ये कि एक तो दुख होता है, अम्मी बहुत दूर है और उम्र भी है, अम्मी की बहुत उम्र है, तो अक्सर अगर बात होती है तो वही रोती है और कहती है कि अगर जब तक तुम आओगे तो हम होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसी बात ही बहुत दुख देती है। और दूसरी बात यह है कि सर जी मैं अगर अपना बताऊं तो क्या बताऊं, किधर हूं मैं, क्या किस हालात में हूं, तो बार बार झूठ बोलूं तो अच्छा नहीं लगता। बस
क्रिसमस आइलैंड में पहुंचने के बाद क्या हुआ
सर जी? क्रिसमस आइलैंड का पूछे मत, जैसे एक नई जिंदगी मिली और सब बहुत खुश थे और इवन मैं भी बहुत खुश था। अपना सर जी जमीन पे रखा है, खुदा का शुक्र अदा किया गया, एक नई जिंदगी मिल गई है और एक नया उम्मीद मिल गया। लेकिन जब पहुंचे उधर तो शॉर्टली हमें बताया गया कि यू पीपल वुड नॉट बी रिसेटल इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर गोइंग टू नाउरू फॉर द प्रोसेस। तो फिर भी हमने सोचा ठीक है, प्रोसेस के लिए जाएंगे। तो हालांकि लोगों को देखा है जो रो रहे है, जो कहते हैं नहीं जाते नरू और ये वो, मैंने कहा जो भी है एक नई जिंदगी मिली है तो जाएंगे नरू और उधर प्रोसेस होंगे, फिर जो है वो जो होगा देखेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि थर्ड कंट्री ऑप्शन मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है थर्ड कंट्री जो भी है मिल जाए तो जिंदगी गुजारेंगे। तो जब इधर आए हैं नरू तो रियली अगर मैं बताऊं तो मैं शॉक हो गया हूं, मैं बिल्कुल लॉस्ट था उस दिन। इस कम्युनिटी के जो लोगों के बिहेवियर्स है उसको छोड़िए, जजीरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखिए ना तो डर लगता है बंदे को, इतना खौफनाक जजीरा है कि इधर कुछ नहीं है। वो भी एक छोटी सी कंजेस्टेड कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी से निकलो 2 मिनट सिर्फ गाड़ी में ड्राइव कर लो तो फिर सारे के सारे ब्लैक और ऊंचे ऊंचे रॉक्स है, वो भी बहुत तेज नोकदार। मैंने पहले बोला है आपको कि इधर जिंदगी का कुछ नहीं पता, क्या खाए जा रहे हैं, क्या पिए जा रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, ये कुछ नहीं पता। बस
तो जब आप कैंप में थे पनाह गुज़ीन की हैसियत से तो वहाँ आपको कुछ सहूलत थी फोन करने की या इंटरनेट के इस्तेमाल के?
एक हफ्ते में दो दफा कॉल करने की इजाजत थी, जो 10-10 मिनट का कॉल होता था और वो 10-10 मिनट के लिए आपको 3 घंटे 4 घंटे वरना 2 घंटे और वेट कर लो। खाना अच्छा था सर जी, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो।
अच्छा, आप लोगों को कैंप में सोने के लिए किस तरह की जगह मिलती थी? आप
3 महीने में स्ट्रेचर नहीं होते जिससे मरीज लिटा के ले जाते हैं
जी, स्ट्रेचर टाइप?
हाँ स्ट्रेचर टाइप, उन पे सोया हूँ 3 महीने बहुत मुश्किल से। उन्होंने बेड लगाए है जिसमें वो डबल बेड नहीं होते, एक ऊपर और एक नीचे, दो बंदे सो जाते हैं,
बंक जिसे कहते हैं,
वो लगाए है उन्होंने और उससे सोते थे। तो उन्होंने बंक लगाए है, उसमें फोम डाले है गर्मी में, और हम जो है टेंट में होते थे कोट ही बंदे एक फैन में, और वो भी गर्मी में, ना कोई पंखे है। मीन्स अगर तुम गर्मी में फॉर्म पे सो तो और भी तकलीफ होती है। मार्क्यूज लगाया उन्होंने। फिर मुझे, मैं अगर किसी ना रोवा को कोई काम बताता हूँ, बात कहता हूँ, तो वो आगे से बात नहीं मान रहे हैं और कहते हैं कि आप कमा रेफ्यूजी कैन गिव मी अदर रेफ्यूज। परचना में, यू नो, पाकिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, उधर तो तालिबान और एक्सट्रीमिस्ट जो है ऑन द स्पॉट मार लेते हैं, इवन स्लॉटर कर लेते थे, और बहुत से लोगों को स्लॉटर भी किया पराचिनार के लोगों को। ऑस्ट्रेलिया के अवाम से सर जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि काइंडली, यू नो, अपने गवर्नमेंट से और अपने लोगों को बताइए, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इस गंदी पॉलिसी की वजह से जिन मासूम लोगों को इधर इस मुश्किल में धकेला है, तो काइंडली अपने मुल्क से अपील कीजिएगा कि इन लोगों को जितना जल्दी मुमकिन है निकालिए, क्योंकि ये इनकी पॉलिटिकल गोल्स है। इधर देखो तो ऑस्ट्रेलिया का सारा प्रोग्राम चल रहा है, नरू का फॉस्फेट जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया ही डिगिंग कर रही है इनकी, और ये इनका बिजनेस है, ये मुझ पे पैसा नहीं, ये सारा ये दोगलापन है। ये बिल्कुल दुनिया को दिखा रहे हैं कि रेफ्यूजीज के लिए इतना कुछ हो रहा है और सालम सीकर के लिए, ये इनकी नास्ती पॉलिटिकल गोल्स है।
आप अब कैंप में इस वक्त क्या हालात हैं? अब कुछ लोग अंदर हैं जो आपको बताते
सर
हैं
जी,
वहाँ
उधर
हालात?
वैसे हालात है सर जी, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट जो स्प्रे है वो पीते हैं, ब्लेड से खुद को काटते पीटते हैं, क्योंकि सर जी मैं अगर बताऊं, ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में बैठ के लोग सोचेंगे ये क्या बचपन है, ये क्या गठियापन है, ये क्या बेवकूफी है कि तुम खुद को काटो, लेकिन जब तुम कैंप में रहोगे, 2 साल गुजारोगे ऐसे हालात में गुजारोगे सर जी, ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशन में तुम 2 साल गुजारोगे, तो तुम्हें कभी बेवकूफी नहीं लगेगी कि तुम अपने आप को काटोगे। और सर जी हो रहे हैं ऐसे वाकयात, हो रहे हैं बिल्कुल सर, आए दिन ऐसे ही होता रहता है कि सुनने में आता है कि फिर से कोई एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, किसी ने रेप किया है और किसी ने ये किया, किसी ने, ये होता रहता है, नॉर्मल है सर जी, ये कैंप्स में ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो रिसेंटली ये हुआ था कि पुलिस ने इतने कैंप से बाहर निकलने के लिए भी मना किया था कि कैंप से भी बाहर नहीं निकलोगे।
अच्छा, कैंप में वहाँ पे कुछ हंगामे भी हुए थे और काफी लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया था और हंगामा राई, तोड़ फोड़ हुई थी, आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे?
जी सर, मैं मौजूद था, सर जी प्रोटेस्ट हो रही है, और वो इसी वजह से मैंने बोला है कि पीटर ड्यूटन जब आया है तो उसने गलत बयानी की है, उधर के लोग खुश है और वो 5 साल भी सेटल हो रहे हैं और वो अपनी जॉब कर रहे हैं, और सर जी उन्होंने झूठ बोले हैं, तो इधर लोग जो है, लोगों ने कहा ये कहाँ, इधर हमसे मिला नहीं है, हमसे बात नहीं की, और उधर जाके मीडिया को बता रहे हैं कि हम खुश है। पुलिस ने आके, इवन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक बंदे ने हमारे एक लड़की को ऐसा पंच मारा है सर जी कि उनको 6-7 स्टिचेस लगी है इधर।
नायरू के डिटेंशन सेंटर से महाजिर का दर्जा हासिल करने वाले सैयद जावेद नायरू से हमसे बात कर रहे थे।